क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही है। तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है इसमें दोनों का जो यश है वो कैसे बढ़ेगा इसका वर्णन माता दीदी कर रही है। तो ये दीदी कौन है? ये अब बहुत सारे बहने हैं लेकिन दो बहनों से आप अच्छे से परिचित हैं। एक है दीदी और दूसरी है अदीदी। पहले मुझे कंफ्यूजन रहता था हमेशा किसकी बच्चे कौन है, तो मैंने इजी सोचा दीदी से दैत्य, अदिति से देवता। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम का ये जो संवाद है वो बड़ा ही रोचक है और रोमांचकारी है। भागवतम में भागवतम अपने आप में बहुत पावरफुल वस्तु है और यदि कोई व्यक्ति अपने मन को उसमें निमग्न करेगा तो कभी उसका मन भागवतम से बाहर नहीं भ्रमण करेगा, वो सदैव भागवतम में ही डूबना चाहेगा और धैर्य और धैर्य, क्योंकि भागवतम साक्षात कृष्ण है। तो अभी जो संवाद हो रहा है ये मैत्रेय मुनि और किसके बीच में, महात्मा विदुर के बीच में। उससे पहले एक संवाद है भागवतम संवाद के अंदर संवाद, संवाद के अंदर संवाद, वाद विवाद ही है उसमें। तो ऐसे भागवतम में यदि हम थोड़ा सा इससे पीछे चले जाएंगे तो हमें समझ में आ सकता है कि ये संवाद क्यों शुरू हुआ है। ये जो रोमांचकारी वर्णन है, शिक्षाप्रद जो ये चर्चा है कि क्यों और कैसे शुरू हुई है, इसके पिछले अध्याय जो 13वां अध्याय है उसके आखिरी में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि अभी अभी मैत्रेय मुनि ने भगवान के विशेष अवतार वराह लीला का वर्णन किया। और वराह लीला तो वैसे ही बहुत लड़ाई झगड़े वाली लीला है, भगवान सीधा निकलते समंदर में फाइट करने के लिए उतरते हैं, उनका लैंडिंग होता है युद्ध करने के लिए और हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। तो उस अध्याय के अंत में भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं और वध करने के बाद जितने भी ऋषि मुनि वगैरह वहां थे वो सारे आनंदित होते हैं और ऋषिगण प्रार्थना करते हैं भगवान की, बहुत सारे स्तुतियों का गान करते हैं। जब ये सब वध आदि ये सब एंड हुआ तो मैत्रेय मुनि से रहा नहीं गया। मैत्रेय मुनि ने सोचा इतना अच्छा मैंने कथा स्तुति नरेश किया है, ये कोई साधारण कथा नहीं है, साधारण चर्चा नहीं है, ये साक्षात परम भगवान कृष्ण जो वराह रूप में प्रकट हुए थे उनके दिव्य लीलाओं का वर्णन है। तो उन्होंने सोचा इस महिमा को यदि व्यक्ति बहुत गंभीरता से सुनता है तो उससे क्या होगा इसके बारे में बताया। क्योंकि कलयुग के जो जीव है वो तभी कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं जब उनको कुछ मिलता है। हाँ, क्लास में आएंगे तो क्या मिलेगा, कोई भगवान प्रसाद मिलेगा, या फिर ये करूंगा तो क्या मिलेगा, मतलब हम कुछ और करने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमें कुछ मिलता ना, भक्ति भी नहीं करना चाहते क्योंकि लगते भक्ति में आएंगे तो शांति मिलेगी, लेकिन शांति मिलती नहीं है। भक्ति में आने के बाद पता चलता है कि अशांति का पहाड़ बहुत बड़ा है, वो मृत्यु आती है तब तक शांति की खोज में रहते हैं। हाँ, शांति देवी मिल सकती है लेकिन असली शांति नहीं मिल सकती। तो वैसे ही मैत्रेय मुनि फिर भगवान की ये जो महती श्रवणीय गाथा है और गंगा नदी के समान पवित्र करने वाली है, गंगा तो बाहर से पवित्र करती है लेकिन ये जो भगवत चर्चा है सीधा हृदय में चली जाती है और अंदर जाकर सफाई शुरू कर देती है। तो ऐसे मैत्रेय मुनि को लगा कि भगवान की महिमा का कथा का जो महत्व है उसको मैं बताता हूं। तो उन्होंने तीन स्टेप में ये महत्ता बताई इससे पूर्व और उन्होंने कहा ये भगवत कथा का परिणाम क्या है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं
तो कहते कि आप कहां भाग रहे हो, मैं तो ये जो रुक्मिणी का विवाह की लीला है ना वो विस्तार से सुनना चाहता हूं। कोई प्रश्न कर सकता है, अरे तुम मरने वाले हो और शादी के बारे में कहां सुनने की इच्छा रख रहे हो वो विवाह। लेकिन परीक्षित महाराज जानते हैं शादी हो या जो भी हो वो किससे संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं हमें उस कुरुक्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है, वो बैटल फील्ड से, हम इसलिए उसमें इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि वहां कौन है, कृष्ण है। तो उसी प्रकार से जब ये बात बोली परीक्षित महाराज ने तो परीक्षित महाराज फिर अपनी थोड़ी टिप्पणी देना शुरू करते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य माध्वी लोक मलापः कौन तृप्येत श्रुण्वान् श्रुतोऽज्ञ नित्य नूतनः। तो भगवान की जो चर्चा है उसके चार गुणों का वर्णन परीक्षित महाराज करते हैं। चार क्वालिटीज हैं कृष्ण कथा की और वो कहते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है कृष्ण कथा की कि हर एक श्रोता को भगवत आसक्ति बढ़ानी है और भगवत कथा को गंभीरता से सुनना है या उसके प्रति श्रद्धा को विकसित करना है तो कृष्ण कथा की चार गुणों के बारे में उसको मनन करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य। हे ब्राह्मण तुम इतना स्पीडली भाग रहे हो, ये जो कृष्ण कथा क्या है पहला शब्द वो यूज करते हैं पुण्य। पुण्य का मतलब है पवित्र है। ये जो कृष्ण कथा बहुत अधिक पुण्यदायक है, पवित्र है। क्यों पवित्र है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्र। वहां गीता के श्लोक में अर्जुन ने बोला आप परम पवित्र हो। जो कृष्ण परम पवित्र है इसलिए कृष्ण से संबंधित जो चर्चा है वो भी क्या है, पवित्र है। इसलिए भागवतम के शुरुआत में ही सूत गोस्वामी कहते हैं सुन्वता सुकता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। कहते कि ये जो कृष्ण कथा है ये अत्यंत पुण्यदायक है, अत्यंत पवित्र है। इसलिए हाँ ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज परीक्षित महाराज कहते हैं माधवी कृष्ण कथा कैसी है, माधवी माधवी भी मधुर है। ये माधवी शब्द आता है मधु से, मधु से भी आदि मधुर कौन है, कृष्ण कथा है। क्यों मधुर है? क्योंकि कृष्ण का एक नाम है माधुर्य का निलय कृष्ण, जो मधुरता के एक में भंडार है, ऐसे कृष्ण है जिनसे ब्रजवासीगण अत्यंत प्रीति या प्रेम रखते हैं। इसलिए ऐसे कृष्ण कथा जो मधु से मधुर है उसके प्रति केवल उन्हीं लोगों का आकर्षण होगा जिनकी मनोवृत्ति मधुमक्खी के समान है। जो मधुमक्खी के समान जिनकी मनोवृत्ति नहीं है वो व्यक्ति मक्खी के समान है जो गंदगी में जाकर बैठने में ही आनंद लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के शुरुआत के पहले स्कंद के अध्याय शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भगवत चर्चा है इनमें तो केवल हंस के समान व्यक्ति रममान करते हैं। इसलिए भागवतम को बोला गया है परमहंस संहिता। इसके ऊपर एक ही व्यक्ति का अधिकार है जो वास्तव में ईर्ष्या से रहित है वही व्यक्ति भागवतम में प्रवेश करने का योग्यता रखता है। भागवतम में प्रवेश बाकी लोगों को नहीं है। जिन व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या द्वेष इतना अधिक भरा है वो भागवतम में क्या प्रवेश करेंगे, जो साक्षात कौन है, कृष्ण है या कृष्ण से अभिन्न है। इसी कारण से भागवतम के शुरुआत में ही शुकदेव गोस्वामी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूमि भावका। तो रसिक गण ही क्या करते हैं, इस भागवतम रूपी जो मधु है उसको पान करते हैं। इसी कारण से वल्लभाचार्य ने पूरा एक सॉन्ग ही लिख दिया मधुराष्टकम् जिसमें वो कहते हैं कि वचनम मधुरम चरित्रम मधुरम। भगवान का वचन मधुर है, उनका चरित्र मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे मधुराधिपति कृष्णा आपकी हर चीज क्या है, मधुर है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ये दूसरी चीज बोलते हैं उसकी क्वालिटी, और तीसरा कहते हैं लोक मला कहा, मला कहा, मल को हटाने में सक्षम है। जो हृदय का मल है, गंदगी है, जिस जो पिकली दूर कर देती है, वो ऐसी कृष्ण कथा है। इसी कारण से सूत्र गोस्वामी ने कहा रुदंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय के जो अभद्र है उसको हटा देते हैं। विदुनोति सुरुत सता, सता में भक्त, भक्तों के पति कौन है, कृष्ण है। तो वो भक्त जब भगवान के बारे में सुनता है तो ये कृष्ण कथा उसके हृदय के जो अभद्र है, और केवल एक अभद्र है, इस संसार को असीमित मात्रा में भोग करने की जो इच्छा है, ये एक ऐसी अभद्र, ये अभद्र है जिसके अंदर सारे बाकी अभद्र आ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने हमें यह विधि दी है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय, बल्कि जो भी दीक्षित भक्त है उसे भागवत पढ़े बिना दिन बिताना नहीं चाहिए। एक प्रकार श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, हो सके तो प्रतिदिन भागवतम का अध्ययन या श्रवण उसे करना चाहिए। इसी कारण से वो कहते हैं कि ये जो भगवत कथा है ये बहुत अधिक गंदगी को दूर करने वाली है। अब इसी को ही मैत्रेय मुनि ने पहले ही बोला है, हम मैत्रेय मुनि पहले ही इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के ऐसा एक भी अध्याय नहीं है जिसमें भगवान की चर्चा का गुणगान किया ना हो। जैसे सेकंड चैप्टर में स्वयं शुकदेव गोस्वामी कहते हैं पिबन्ति एव भगवतात्मना सदा कथामृतं श्रवण पुटेषु संवृतं पुनर्ति ते विषय विदूषिताश्रयं व्रजन्ति तच्छरण सरोरुहन्तिकम्। कि यदि कोई व्यक्ति अपने कानों के जो प्याले हैं उसे कृष्ण कथा को भर भर के पीता है तो उसके हृदय में क्या होगा, पुनर्ति ते विषय विदूषित आशया, हृदय के जो गंदी इच्छाएं हैं वो शुद्ध हो जाएगी। जिस प्रकार से शरद ऋतु में जो जल है वो शुद्ध हो जाता है, तो इस प्रकार से जो परीक्षित महाराज है वो जानते हैं कि जो भगवत चर्चा है उसका तीसरा क्वालिटी है गंदगी को हृदय के क्विकली साफ करता है। और चौथा वो बोलते हैं नित्य नूतना, ये कैसे है, हमेशा हमेशा नया है, क्योंकि भगवान क्या है, नव नवाय मां, भगवान को यह शब्द यूज किया गया है। भगवान हमेशा नए हैं, उनके संबंधित उनकी चर्चा उनकी गाथा वो भी वैसी नहीं है। इसी कारण से शुण्वित भक्त्या श्रवये, इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अरे व्यक्ति इसको अच्छे से सुनो ना, क्यों इतना लेजी हो रहे हो, क्यों इतना आलसी हो रहे हो, क्यों नहीं भगवान के ऐसे सुंदर गाथा को सुनते हो। बल्कि परीक्षित महाराज इससे शांत नहीं हुए। परीक्षित महाराज भागवतम में आप देखेंगे नवम स्कंध में आखिरी का श्लोक, जब सुखदेव गोस्वामी को सोचा कि मैंने अगर रामलीला का वर्णन कर दिया है दो अध्यायों में, शायद रामलीला का वर्णन नवे स्कंध के दो अध्यायों में एक अध्याय में कर डाला, तो सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा और स्पीड तेज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो कृष्ण लीला है वो पूरी उन्होंने बोल दी। कैसे बोल दी, पूरा दशम स्कंध की सारी लीलाएं दो श्लोकों में बोल दी, और उन्होंने इतना अमेजिंगली बोल दिया। वो कहते हैं पहले तो उन्होंने भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया शुकदेव गोस्वामी ने, उन्होंने गाया यशाननम मकर कुंडल चारु कर्णम। तो वो कहते हैं कि जिनकी मुखमंडल है वो मकर कुंडलों से सुसज्जित है, उनके कान आदि, और जिनके गाल सदैव चमकीले हैं, और उनकी जो आसी हंसी है सबको आकृष्ट करने वाली है, ऐसे भगवान कृष्ण ब्रज के सारे लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। तो फिर उन्होंने एक श्लोक में बोला कि भगवान कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है वो मथुरा में प्रकट होते हैं, कुछ बहाना बनाकर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाकर भगवान से प्रेम व्यवहार बढ़ाते हैं, आसुर का वध करते हैं, द्वारका लोक जाते हैं और बहुत सारे स्त्रियों से विवाह करते हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं और फिर एक महायुद्ध करते हैं, पृथ्वी का भार विनाश करते हैं और फिर उद्धव को शिक्षा देकर इस जगत से चले जाते हैं। इतनी सारी चीजें कितने श्लोकों में, दो श्लोकों में, और सीधा फिर 11वें स्कंद आगे बढ़ रहे थे। अभी गुस्सा आ गया इसको परीक्षित महाराज, मानो परीक्षित महाराज को लगा मेरे ऊपर वज्रपात हो गया है। ये शुकदेव गोस्वामी को हुआ क्या? जो कृष्ण प्रेम के विषय है उनके बारे में लंबा बोलना चाहिए, ये राजाओं के बारे में, इधर उधर के अवतारों के बारे में इतना इतना बोल दिया, पूरा 9 स्कंद लगा दिए, 5 दिन बीते थे और आखिर जिनके लिए भी व्याकुल था, जिनके बारे में सुनने के लिए, उनको इन्होंने लपेट दिया 2 श्लोकों में। अब इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने कहा नहीं, ये राजा महाराजाओं का चरित्र बहुत सुनाया, अब डायरेक्टली कृष्ण के बारे में सुनाओ। और कैसे सुनाओ? आप भागवत के 10वें स्कंद के शुरुआत के 2 श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली उन्होंने बोला है वद विस्तरा, वो कहते बोलना है तो कैसे बोलो, विस्तार से बोलो, नहीं तो आगे कथा इधर बंद, मैं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे थे परीक्षित महाराज, क्यों, किनसे प्रेम रखते थे, कृष्ण से, और किसके बारे में सुनने में आनंद लेते थे, कृष्ण के, हाँ कृष्ण के बारे में सुनने में आनंद अनुभव करते थे। तो इस प्रकार से जो भक्त है, हम मैत्रेय मुनि कहते हैं, गंभीरता से सुनेगा और भगवान की कथा को अपनी जीवा से दोहराएगा तो कृष्ण सबसे आगे प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन्होंने बोला हृदय प्रसिद्धति, और ये शब्द किया आशु, मीन्स क्विकली, तीव्रता से आनंदित होते हैं। और वास्तव में सारे वर्ण और आश्रमों के नियमों का पालन करने का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को तुष्ट करना। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, ये अपने वर्ण और आश्रम का बहुत अच्छे से नियम पालन कर रहे हैं लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता क्या है, अतः कुंभे द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सुनस्तुतिश्च धर्मश्च संसिद्धि हरितोषणा। तो इन सारे वर्ण और आश्रमों का उद्देश्य है कि उन कार्यों से भगवान हरि संतुष्ट हो जाने चाहिए। तो भगवान हरि को प्रसन्न करना ही हमारा उद्देश्य है और हमें जानना चाहिए कि भगवान हरि जो कृष्ण है वो किन चीज से प्रसन्न हो सकते हैं। हमारे पास भौतिक जितनी मर्जी योग्यताएं हो, कृष्ण उससे कदापि आकृष्ट नहीं होते। इसलिए रूप गोस्वामी ने एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पद्यावली। पद्यावली वो ग्रंथ है, रूप गोस्वामी ने अपने श्लोक यूज नहीं किए, जितने भी वैष्णव गण हुए हैं पूरे संसार में, साउथ में, इधर उधर जहां मर्जी, सबके श्लोकों को लेकर उन्होंने टॉपिक वाइज डाल दिया है और इतना अद्भुत है वो, जिसमें श्लोक के बाद श्लोक और जिसमें शिक्षाओं का भंडार है। तो उसकी शुरुआत में ही वो भजन के महात्म्य का वर्णन करते हैं कि भगवान कौन सी चीज से आकृष्ट होते हैं, जिसके बारे में रूप गोस्वामी लिखते हैं कई सारे उदाहरण देकर। रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं व्यादर्शाचरण ध्रुवश्च वयम्, वो कहते हैं कि क्या ऐसी चीज थी व्याध जो मृगालय है, हाँ, उसका आचरण देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं था, सदाचार नाम की चीज मृगालय के पास नहीं थी। वो क्या करता था, पशुओं को मारता था, उससे अपनी उपजीविका चलाता था, लेकिन भगवान उससे आकृष्ट हो गए। ध्रुवश्च वयो, कोई व्यक्ति कह सकता है, सोच सकता है कि मेरे पास अभी मैं बच्चा हूं, ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा तो अच्छा भक्ति कर सकता हूं। तो कहते हैं ध्रुव को देखो, उनके पास वह ऐसा आयु इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं विद्या गजेंद्रश्च कहा कि जो गजेंद्र हाथी है वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान उसके लिए दौड़ पड़े, उसको बचाने के लिए आ गए। कुब्जायां किमुनाम रूपम अधिकम किम तत् सुदामनो धनम। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कुब्जा को ही ले लो, वो कोई रूपवती सौंदर्यवती नहीं, लेकिन भगवान उससे क्या हो गए, आकृष्ट हो गए। सुदामनो धनम, किसी को लगता है अरे भक्ति तब अच्छी होती है जब धन व्यक्ति के पास होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन सुदामा के पास कोई धन नहीं था, लेकिन कृष्ण उनके थे। और वो कहते हैं वंश को विदुरश्च यादवपते, और विदुर का क्या वंश था, उदासी पुत्र थे, कोई बड़े कुल में उन्होंने जन्म नहीं लिया था, लेकिन भगवान दुर्योधन के आदि भोग आदि को त्याग कर विदुर के घर जाते हैं। और जो उग्रसेन है वैसे देखा जाए तो उग्रसेन के पास कोई शारीरिक शक्ति या बल नहीं था, वृद्ध थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान ने राजा बनाया और भगवान उनके प्रति आकृष्ट हो गए। इसलिए रूप गोस्वामी इतने सारे उदाहरण देकर उसका सार बताते हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम। वो कहते हैं कि भगवान केवल भक्ति के द्वारा ही तुष्ट हो जाते हैं। गुणेर भक्ति प्रिय माधवा, जो माधव है केवल भक्ति से ही प्रिय हो सकते हैं, कोई भौतिक गुणों से नहीं। इसलिए भगवद गीता जो प्रारंभिक अध्ययन करने का विषय है, जिसमें भगवान ने शुरुआत में ही बोल दिया, भगवान ने संबंध ज्ञान का वर्णन करते हुए अभिदे मुझे प्राप्त करने की जो विधि है उसका वर्णन किया, और भगवान ने कहा भक्त्या तू अनन्या शक्या, हे अर्जुन मैं जिस रूप में यहाँ खड़ा हूँ आप मुझे जान सकते हो, कैसे, अनन्य भक्ति के द्वारा। श्री श्री राधागोविंद के, सीताराम लक्ष्मण के, श्री श्री पंचतत्व के। तो इस प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। इसलिए बारंबार भगवद गीता के अलग अलग अध्याय में यही चर्चा आती है, भक्त्या माम विजानाति, या फिर कोई कह सकता है भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, तो भक्ति क्या है, तो भगवान आठवें अध्याय में कहते हैं अनन्य चेता सततम योगम स्मरति निर्देशः। जिन कार्यों के द्वारा भगवान का स्मरण बढ़ जाता है वो वास्तव में क्या है, भगवत भक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान केवल संतुष्ट हो सकते हैं, आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं हमारी भक्ति में कार्यों से, और भक्त सदैव ढूंढता है गुरु के माध्यम से वो सेवा करता है जिसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो जाए। हाँ, जैसे हनुमान है, हनुमान ने देखा कि एक स्त्री क्या लगा रही थी अपने माथे में, कुमकुम लगा रही थी, फेमस स्टोरी हम हमेशा सुनते हैं। हनुमान ने जब देखा वो स्त्री कुमकुम लगा रही है, फिर सीता को देखा होगा तो वो माथे में कुमकुम लगा रही है, तो उन्होंने पूछा ये क्यों आप लगा रही हो, तो सीता देवी ने शायद कहा उनको कि इसलिए जिससे कौन प्रसन्न होते हैं, राम प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया, जो कार्य जिससे भगवान को आनंद आता है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो करने के लिए हनुमान तत्पर होते हैं। तो हनुमान दौड़ते हैं और सिंदूर लेकर आते हैं, बहुत सारा सिंदूर लाते हैं और अपने पूरे शरीर में मलते हैं, लेपन कर देते हैं और जाकर भगवान राम के सामने खड़े हो जाते हैं। उनको लगा सीता के छोटे से बिंदिया साइज से इतना आनंदित होते हैं, तो मैं क्या करूं, पूरा लगाव अपने देना है। तो भगवान राम बहुत अधिक आनंदित हो सकते हैं। तो ये गए और जैसे ही राम के सामने खड़े हो गए, भगवान राम जोर जोर से हंसने लगे, हाँ उनके इस रूप को देखकर और इस व्यवहार को देखकर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि भगवान के मुख पर हंसी ला देना या भगवान को संतुष्ट कर देना, ये एकमात्र जो उद्देश्य है एक भक्त के हृदय में होता है। इसलिए प्रभुपाद बारंबार कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान को तुष्ट करेंगे तो सारा जगत संतुष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम भगवान तुष्ट हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति उनके चर्चा को सुनता है, और उनकी लीला कथा आदि को क्या करता है, सुनाता है। इसलिए जो संवाद है मैत्रेय और विदुर का, जब ये 14वें 13वें अध्याय में सब ज्ञान हुआ, तो ये 14वें अध्याय की जब शुरुआत की, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत में ही विदुर जी परी इनको मैत्रेय मुनि को हाथ जोड़ते हैं, ऐसे ऊपर हाथ करते हैं और कहते मैत्रेय मुनि आपने ये जो बरहा देना बोली है ना, इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी मैत्रेय मुनि कहते तुम्हें वो परीक्षित महाराज के जैसे बीमारी हो गई क्या? हाँ, संतुष्ट नहीं मतलब क्या? ये हाथ जोड़ के महाशब्द यूज करते शुक्रदेव गोस्वामी, कहते दृढ़ व्रता, ये विदुर दृढ़ व्रता दोनों हाथ जोड़े और मैत्रेय मुनि को कहते हैं नच अति तृप्तो, मैं पूर्ण रूपे न अभी तक बरहा लीला सुन के तृप्त नहीं हुआ, मुझे और चाहिए और चाहिए। जैसे गोवर्धन थे, उनके लिए भोजन चाहिए था, तो वो चिल्ला रहे थे बेचारे गोवर्धन, क्या कह रहे थे, अन्य और अन्य और अन्य और लाओ और लाओ। तो वैसे जो भगवत भक्त है और वास्तव में उन्नत भगवत भक्त है, वो भगवान की महिमा बोलने में और भगवान की महिमा सुनने में कभी थकता नहीं है। हम उसके अंदर क्या है, एक गुण है लोभ। इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर एक उन्नत भक्त का वर्णन करते हुए कहते हैं लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ को कृष्ण की सेवा में लगाना है तो इस लोभ की भावना को परिवर्तित कर दो, इतना लोभी हो जाओ साधुओं का संग करने में, हरि कथा का श्रवण करने में। हम जैसे इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तत्र लव्य मूल्य में एकला जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते, भगवान को प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, एक व्यक्ति के अंदर तीव्र लालसा होनी चाहिए, लव्य होना चाहिए। हम जैसे कोई नया मोबाइल का ब्रांड आ जाता है, नया अराइवल होता है किसी का मोबाइल का, तो हमारे अंदर कितना लव्य होता है, कब आएगा वो नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक के बाद एक वेट करते रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती। हम तो इतना लवले हैं कि साधारण वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो उससे भी अधिक लवले किसके लिए होना चाहिए, भगवत कथा बोलने के लिए और भगवत कथा सुनने के लिए। इसलिए ये लालसी भक्त का वर्णन भगवत गीता में भगवान ने किया है। भगवान कहते हैं मच्छिदान प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, जिसके अंदर वास्तव में लोभ है वो भक्त भगवत गीता में भगवान कहते हैं। वो क्या करता है, जिसका चित्त मुझ में है और जिसका मदगत प्राणा मैं नहीं हो तो उसका प्राण चला जाएगा, भगवान ऐसा कहते मदगत प्राणा हो जाएगा। तो ऐसा भक्त और भक्तों के संग में क्या करता है, मेरी चर्चा करता है और उसी में ही आनंद की अनुभूति करता है। और केवल वही व्यक्ति भगवान कहते भजता प्रीति पूर्वक, जिसके अंदर वो भावना है वही व्यक्ति वास्तव में प्रेम में ही सेवा कृष्ण की कर सकता है। अभी सेवा हमारे लिए क्या है, एक साधना है, एक बोझ है, वो भारी लगता है। लेकिन जिसके हृदय में प्रीति है उसके लिए सेवा कभी बोझ नहीं लगता है, उसके लिए क्या है, सेवानंद, सेवा में ही आनंद। क्योंकि हम इस संसार में आनंद ढूंढते हैं, कुछ लोग अपना बच्चा जन्म लेता है वो सोचते हैं कि मुझे आनंद नहीं मिला तो बच्चे का नाम आनंद रखते हैं, बच्चे का आनंद फिर उससे कम नहीं होगा, कहते एक बच्चे से आनंद नहीं आया, दूसरा बच्चा होता है उसका परमानंद और तीसरा होता है तो उसका देवानंद। तो ऐसे आनंद ही आनंद ढूंढते हैं, बाद में जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनको लगता है कि इनमें आनंद नहीं है, आनंद के आगर कौन है, कृष्ण है। तो इस प्रकार से वास्तव में हम हमारे लिए इस सेवा आदि क्या है, एक साधना है और हम प्रेम पूर्वक वो नहीं कर सकते। तो लेकिन जब विदुर जी का जो उत्साह देखा, विदुर जी ने पूछा कि जरा बताओ ना विस्तार से, ये हिरण्यकश्यप के रूप है, मुझे वो हिरण्यकश्यप के बारे में भी जानना है। उसके जन्म के बारे में भी जानना है। तो जो जन्म के बारे में बोला, मैत्रेय कहते हैं आगे आज की घटना सुनाता हूं, कहते आपको लेके चलते ले गए। कहा जहां कश्यप और दिति का संवाद हो रहा था, अभी संवाद के अंदर संवाद है, पहले शोक परीक्षित, फिर सुत शौनक, फिर मैत्रेय विदुर, और उसके अंदर कौन है अभी दिति और कश्यप। तो कश्यप मुनि और दिति का ये जो संवाद है जिसकी शुरुआत कई दिनों से हुई है और भक्त लोग सुनते जा रहे हैं, तो आज के श्लोक में ये दिति है वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करती है। दिति कहती है, बल्कि इससे 10-12 श्लोक पूर्व यदि हम देखें तो ये जो दिति है जिसका वर्णन मैत्रेय मुनि करते हैं, वो कहते कि ये दिति के अंदर काम इच्छा बहुत अधिक जागृत हो गई। अब काम जो शब्द है केवल वैकुंठ जीवन से सीमित नहीं है, काम शब्द भौतिक कामनाएं, जितनी भी कामनाएं हैं उनको एक शब्द में डाल दिया है काम। तो ये बहुत बड़ा विस्तार में शब्द है, तो कई प्रकार की कामना हो सकती है। तो ये दिति के अंदर एक कामना आ गई, कौन सी, एक तो है कामेच्छा, लेकिन उसके अंदर ओरिजिनल इच्छा छिपी हुई थी जिसको मैत्रेय मुनि कहते हैं पुत्रेच्छा। कौन सी इच्छा? पुत्र प्राप्ति की इच्छा। चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्र हीनम ग्रहम ही शून्यम, घर में यदि पुत्र नहीं है तो वो घर क्या है, शून्यायतम जगत सर्वम, या फिर वो ग्रह नहीं है, वो गृहस्थ जीवन नहीं है। शास्त्र कहते हैं गृहस्थ में पुत्र, तो वैसे ही इसके हृदय में पुत्र प्राप्ति की इतनी इच्छा हो गई उसने वेश्या के समान आचरण किया। वेश्या का लक्षण क्या है, लज्जा नहीं होती उसमें, इसने उनके वस्त्र खींचना शुरू किए। और जब कोई इच्छा हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो वो इच्छा हमें क्या कर देती है, अंधा कर देती है। जैसे गीता के जो पहले श्रोता है, कौन है पहले श्रोता, महाराज धृतराष्ट्र, वो प्रभुपाद उसी में लिखते हैं ये अंधे हो गए पुत्र आसक्ति, पुत्र के प्रति आसक्ति से उनको अंधा कर दिया। और यहां दीति को अंधा कर दिया पुत्र कामना की इच्छा से, और वास्तव में जो पुत्र इच्छा है ये अंधा कर देती है। देखो और भी एक डिवोटी थे भागवतम में, कौन है, चित्रकेतु। चित्रकेतु पुत्र संता नहीं थे, उनकी कितनी पत्नियां हो सकती हैं,
1 लाख
नहीं, वास्तव में जो करोड़पति टाइटल किसी को लगा सकते तो एक ही व्यक्ति योग्य है, वो है महाराज चित्रकेतु। असली में पत्नी करोड़ पत्नियां थी उनकी, भागवत में कहा गया है करोड़ पत्नियां होकर भी एक ही पुत्र नहीं था, एक ही संतान नहीं थी। तो अंगिरा मुनि का आश्रय लेते हैं और उनसे कहते बस मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा मुनिगण जानते हैं इस संसार में जो भी चाह करोगे ना उसके पीछे दुख ही दुख छिपा हुआ है। वो कहते थोड़ा रुक जाओ, कोई भीड़ नहीं है। कहते नहीं, कहते पुत्र हो जाएगा मेरे कहने से, लेकिन जितना सुख मिलेगा ना उसके जन्म से उससे अधिक सुख उससे मिलेगा जन्म होने के बाद। तो उन्होंने कहा तैयार है, ऐसे देख सकते हैं चित्रकेतु अंधे हो गए। और जब जन्म हुआ इन्होंने बोला उसका नाम क्या रखो, हर्षशोक, हर चीज का नाम रखना चाहिए। अपने जीवन में जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, वो सब क्या है, हर्षशोक के ही विस्तार है। तो ऐसे हर्षशोक ने जन्म लिया, राजा बहुत आनंदित हो गए। और फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तो राजा अत्यधिक दुखी हो गए। तो वैसे ये दिति भी, हम दिति के अंदर ईर्षा द्वेष, अब क्यों, क्योंकि और 13 सौतन क्या कहते हैं और पत्नियां, सौ ना हाँ कश्यप मुनि की और पत्नियां थी, उसमें से एक दिति, 13 बहने। तो ऐसे देखो कि सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे नाच रहे, खेल रहे, कूद रहे, खा रहे, सो रहे, घूम रहे, मेरे पास बच्चे नहीं। तो उसने कहा मुझे संतान चाहिए। तो लेकिन ये बहुत बुद्धिमान है, इतने भी उचित नहीं है, बल्कि आप यदि दोनों का संबंध फिर से पढ़ना है, नेक्स्ट क्या होता है पार्ट टू, तो भागवत के छठा स्तर पढ़िए, उसमें और रोमांचकारी डिस्कशन है द्वितीय और कश्यप का। तो यहाँ इन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, आप मुझे क्या करो, मेरे ऊपर दया करो। हाँ, तो फिर वो कहती है, हम पिछले श्लोक में कहा कि मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरी काम इच्छा की पूर्ति कीजिए, जिसके द्वारा मुझे संतान प्राप्त हो सकती है, और फिर क्या होगा ऐसा होने से। तो आज के श्लोक में कहती है भर्तरी आत्मरुमानाना लोकान अविशते यशः। भर्तरी मीन्स पति द्वारा, पति द्वारा आत्मरुमानाना, आत्मरुमानाना मीन्स पत्नीय प्रेयसी। तो जो पत्नी है वो भर्तरी पति के द्वारा क्या करती है, यश यश प्राप्त करती है। कहा लोकान अविशते, सारे संसार में जग पर उसका यश कीर्ति या आदर उसे प्राप्त होता है, किसके द्वारा, पति के द्वारा। इसलिए वो कहती है कि स्त्री का जो गहना है, स्त्री का गहना क्या है कौन बताएगा, हाँ कई सारे गहने हैं। तो यहां वो कहती है कि स्त्री का जो सम्मान या आदर यश फैलता है जब वो अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करती है। प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं जब स्त्री पति का आशीर्वाद प्राप्त करती है या उसकी अनुगत होती है सदैव और उसकी सेवा में नियुक्त होती है, तो वो वास्तव में पूजनीय या आदरणीय हो जाती है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं स्त्री की शोभा उसका पति है, पति के बिना स्त्री जितना मर्जी अपना सौंदर्य निहारे, जितना मर्जी लेपन करे, आभूषण धारण करे, उसका सौंदर्य नहीं है। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं न तंत्री विद्यते वीणा, न चक्रो विद्यते रथ, न पति सुख मेध्यते या शतपि शता आत्मजः। जिस प्रकार से वीणा की शोभा उसकी तारे हैं, श्री की तुलना वीणा से की है, वीणा की शोभा तारे में पति है, और जिस प्रकार से रथ की शोभा उसका पहिया है, यदि रथ को पहिया नहीं है, चक्र नहीं है, तो रथ का कोई लाभ नहीं है। और श्री के पास हजारों पुत्र भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके जीवन में पति नहीं है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये स्त्री का जो यश है, या कब स्त्री यशवान होती है, तो वो केवल जब वो पति के अनुगत होकर धार्मिक कार्य में क्या होती है, नियुक्त होती है। इसलिए हमारे वैदिक समाज में स्त्री का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत वैदिक समाज में सर्वोच्च स्थान है स्त्री का। और स्त्री तीन प्रकार से कार्यरत रहती है, एक है माता, दूसरी है पत्नी और तीसरी है कन्या। ये तीन रोल एक स्त्री अदा करती है। इसलिए शास्त्रों में माता का जो भाव है स्त्री का वो बहुत गर्वित है, बहुत महिमा मंडित है। हम शास्त्रों में सुनते हैं मनुस्मृति में 16 प्रकार की माताओं का वर्णन है और दूसरे स्मृति ग्रंथ में 7 प्रकार की माताओं का वर्णन है। तो हम देखते हैं कि ये माँ का जो दर्जा है स्त्री के पास जो है इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, जब हम गिरते भी हैं कहाँ, तो सबसे पहले किसका नाम उच्चारण करते हैं, तो किसका, माता का। भगवान भी माँ का उच्चारण करने के लिए प्रकट हुए थे, माता यशोदा के कोख से, और वो सदैव केवल माँ माँ करते रहते थे, माता पुकारते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए जो स्त्री का जो स्थान है वो सर्वोच्च है, लेकिन यहाँ दीदी कहती है कि स्त्री की शोभा उसका पति है, और उसके लिए स्त्री को क्या होना चाहिए, उसके धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और उसका असली धर्म है पति प्रसाद धर्म, जिसके बारे में स्त्री को अवगत होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो पति है पत्नी है, पत्नी शब्द का जो अर्थ है शास्त्र में दिया गया है, शास्त्र में कहा गया है पत्नी का मतलब है जो पतन से बचाती है, अपने पति को पतन से बचाती है उसे क्या कहते हैं, पत्नी कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी और एक उदाहरण देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पत्नी की तुलना एक किले से की गई है और जो इंद्रिया है उनकी तुलना शत्रुओं से की गई है। तो जो पति है जब शत्रुओं के द्वारा आहत होता है तो स्वाभाविक रूप से जो किला है उसका आश्रय ग्रहण करता है। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च, हाँ कि भार्या या पत्नी ही मूल है गृहस्थ जीवन का, या पत्नी ही मूल है गृहस्थ जीवन के सुख का। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने भागवतम के कई तात्पर्यों में ये सारी चीजें दी हैं। इसलिए एक स्त्री की या एक नारी की जो शोभा है वो एक गुण से है और वो गुण है उसका पातिव्रत धर्म या उसका सतीत्व। श्रीमद् भागवतम में यहाँ जो देती है वो थोड़ी सी अलग प्रकार से आचरण कर रहे थे, वो थोड़े से हट रहे थे अपने आचरण से। तो श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं यदि किसी मनुष्य को पतिव्रता श्रेय मिल जाती है तो उसके जीवन के जितने भी विकट परिस्थितियां हैं उससे वो ऊपर उठ जाता। यदि पूछे कोई क्यों, तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री सद्बुद्धि की उगम है, उसके पास कुबुद्धि नहीं होती। उसके पास कौन सी बुद्धि होती है, सद्बुद्धि होती है। और ऐसी सद्बुद्धि वाली स्त्री जब पति का साथ देती है भगवत भक्ति में, तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं उसी को कहते हैं आदर्श गृहस्थ जीवन या उसी को कहते हैं असली गृहस्थ आश्रम। तीसरी प्रभुपाद कहते हैं कि ये विशेष गुण ये वैदिक एक सत श्री में होना चाहिए कि जिसके अंदर ये पतिव्रता धर्म या पति की सेवा करने के लिए सदैव तत्परता होनी चाहिए। तो ऐसी श्री का गुणगान शास्त्र कई सारे श्लोकों में करते हैं। एक श्लोक में कहा गया है धन्यासा जननी लोके धन्यासो जन प्रभुना धन्यासच पति श्रीमान एषांगे पतिव्रता, कि कहते हैं धन्यासा जननी लोके वो माता धन्य है जिसने पता पतिव्रता श्री को जन्म दिया है, या वो पिता धन्य है, या वो पति धन्य है जिसके ग्रह में उसे कौन सी श्री प्राप्त हुई है पत्नी रूप में पतिव्रता श्री। इसलिए शास्त्र कहते हैं यदि पतिव्रता या सतीत्व धारण करने वाली स्त्री है इस संसार में जब वो चलती है तो पृथ्वी माता आनंदित होती है। पृथ्वी माता सोचती है कि मैं तो पवित्र हो गई हूँ, तीर्थों का जल पवित्र हो जाता है उसके स्पर्श से। शास्त्र कहते इतना ही नहीं, ऐसी स्त्री को देखने मात्र से व्यक्ति के जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति था जिसने बहुत सारे पाप कर्म किए थे, पुराण में कथा आती है, इतने सारे पाप कर्म किए, फिर बाद में उसको लगा नहीं नहीं ये सारे पाप कर्मों से मुझे मुक्त होना है, हाँ इसे प्रायश्चित करना है। तो वो उसने 70 लोगों की हत्या कर दी थी और जाकर अपने गुरु के पास गया। पुराण में एक महर्षि इस कथा का वर्णन करते हैं, जब उस गुरु के पास गया गुरु को कहा मैंने 70 लोगों की गर्दन अलग कर दी है शरीर से, बहुत पाप हो गए हैं, मुझे अभी इससे मुक्त होना है, प्रायश्चित करना है। तो गुरु बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने कहा बेटा तुमने इतने एक व्यक्ति को प्यास झेलने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, तुमने 70 लोगों की गर्दन अलग कर दी है। तो उन्होंने कहा तुम्हें जाकर सारे तीर्थों में स्नान करना होगा। उसके हाथ में झंडा पकड़ा दिया, कैसे कलर का, काले कलर का, सारे तीर्थों में जाकर स्नान करो और इस झंडे को भी नहला दो, जिस तीर्थ में झंडा डूबेगा
और सफेद हो जाएगा, तब समझना कि तुम्हारे सारे पाप क्या हो गए, धुल गए हैं, शुद्ध हो गए हो। तब इसने एक हाथ में झंडा लेकर दौड़ रहा था, पूरे पृथ्वी के इसने स्नान कर करके थक गया, खुद स्नान करता था, झंडे को स्नान कराता था, ऊपर देखता था उसका कलर वैसे की वैसे है। हाँ, वैसे हमारा हृदय है, कितना कुछ नहला रहे उसे अंदर वैसे की तैसा, तो वैसे ये झंडा काला की काला ही था। फिर सोचा अभी गुरुदेव नहीं हो सकता मुझसे, अगर कुछ बात जाता ये झंडा गुरु के चरणों में डाल देता। निकला बहुत गुस्से में था, जब रास्ते में जा रहा था एक घनदार जंगल से, तो उसको आवाज सुनाई दी, एक श्री आप हेल्प के लिए सहायता के लिए रोदन कर रहे थे, हाँ चिल्ला रहे थे, 10 लोग उस पर अत्याचार कर रहे थे, और उस स्त्री वास्तव में महान पतिव्रता स्त्री थी, और जब उस पर वो अत्याचार करना शुरू कर रहे थे, उसको पकड़ के लाए थे, और ये जा रहा था आवाज की तरफ गया, तो देखा ये क्या है। उसने सोचा अभी मैं जीवन में कुछ नहीं कर रहा, एक बार थोड़ी सी सहायता करता। उन्होंने कहा 70 तो काटे दिया है, और दस उसने देखा वो हमेशा तलवार रखता था साथ, तो उसने सोचा 70 तो पहले अलग हो गए हैं, अभी और 10 को बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी झंडे का कलर बदलने वाला। फिर गया तलवार निकाली, और एक क्षण में क्या किया, वो 10 की गर्दन उसने अलग कर दी, और फिर अलग कर दिया और अपनी तलवार रखकर झंडे को ऐसे पकड़ा, तो देखा कलर क्या हो गया उसका, सफेद। वो तो इतना गदगद आनंदित हो गया, नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो वो गया गुरुदेव के पास दौड़ते हुए, नाचते हुए, चिल्लाते हुए, गुरुदेव फाइनली कलर सफेद हो गया। गुरु कहते अरे, बोला तीर्थ का नाम क्या था? वो कहते आस्सी तीर्थ। पहले जब मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था उस कुरान से, तो ये तीर्थों के नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं ना, थोड़े से आस्सी तीर्थ में संस्कृत लगता है, आस्सी तीर्थ कुछ तो लगता है शब्द, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। फिर बाद में उसने जब एक्सप्लेन किया उस जिस चोर ने, उसने कहा गुरुदेव पहले 70 और उसने अभी 10, ये मिला कि आस्सी तीर्थ हो गया, और जिसके कारण सफेद। तू बोला मैं स्नान मार तो कुछ किया नहीं, फिर भी सफेद कैसे हो गए, गुरु जो आप ही बताओ। तो गुरु ने कहा वास्तव में तुमने क्या किया है, उस स्त्री का जो सतीत्व है जिसने धारण किया है, पतिव्रता नारी का दर्शन और उसकी थोड़ी सी सेवा भी, जिसके द्वारा ये भौतिक पाप वैसे निकल जाते हैं, तो फिर भगवत नाम आदि कितना ग्लोरियस है। शास्त्रों में ये छोटी छोटी चीजों से इतना लाभ है, तो ये भगवत नाम भगवत सेवा कृष्ण से संबंधित जो चीजें हैं उनकी तुलना या उनकी जो महिमा है वो असीमित है। इसलिए शास्त्रों में यह भी दिया है अहल्या द्रुप लेखम ते तारा मंदोदरे पंचकन्या स्मरत्यम महापातक नाशिनी। शास्त्र कहते हैं इनका स्मरण करने से महापातक चले जाते हैं, तो फिर भगवान नाम की क्या, हाँ भगवान नाम के बारे में क्या कहा जाए। तो इस प्रकार से ये जो पातिव्रत धर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है हर स्त्री के लिए। लेकिन हाँ आज के समाज में क्या है, जैसे प्रभुपाद के समय में एक टेंपल प्रेसिडेंट था, उसने एक शादी की, दूसरी शादी की, फिर तीसरी भी की। वो तीसरी शादी की तो भक्तों ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ने कहा टेंपल इसलिए नहीं है, तुम शादियां करते जाओ और मंदिर उसका पालन पोषण करे। प्रभुपाद ने कहा उसको किक आउट कर दो बाहर, प्रभुपाद इसको कभी भी स्वीकारते नहीं है। हाँ, तो जिस प्रकार से जो पति है वो सोचता है पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, और मैं कैसा होना चाहिए, निर्लज्ज घूमता रहो खाता जो मर जाए, तो दोनों के लिए दो धर्म है। हाँ, जैसे भगवान राम का कौन सा धर्म था? एक पत्नी व्रत, तो वो सब पति के लिए लागू है। और स्त्रियों के लिए क्या है? पतिव्रता धर्म है। शास्त्र कहते हैं पतिव्रता स्त्री इतनी शक्तिशाली है, हाँ, कि सूर्य भी बेचारा डरता है उनसे और अग्नि भी जलता है उनको देखकर। जैसे ब्रह्मचारी थे, पुराण में और एक कथा आती है, वो ब्रह्मचारी इतना तपस्या करता था, बहुत पावरफुल, और इतना उसका तपोबल बढ़ गया ब्रह्मचारी का पालन करके तपस्या आदि करके, तो एक बार उसने एक पंछी ऊपर आ गया और उसने उसके ऊपर अपना मल त्यागाया, जो भी किया होगा डिस्टर्ब कर दिया उसको। इस ब्रह्मचारी ने ऐसे देखा उसकी ओर, जलकर गिर पड़ा, पंछी नीचे गिर पड़ा। अब इसका घमंड इतना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतना मुझ में पावर है, इतना बड़ा साधक हूँ। अब ये भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, भिक्षा मांगने के लिए गृहस्थों के घर जाएगा और कहा जाएगा, वहां गया भिक्षा मांगने, एक दरवाजा नॉक कर रहा था टप टप टप, तो वहां टाइम लगा बाहर आने के लिए। तो जो स्त्री है लंबे समय के बाद बाहर आ गई। अभी उसको तब तक अपना इसका तपस्या का वो घमंड और था ना जोश, उसने ऐसा उसकी तरफ क्रोध से देखा, उस माता जी की तरह, हाँ, तो वो माता जी बहुत उन्नत थी, हाँ, पतिव्रता धर्म और साधना आदि, उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो सीधा बोले उसे, तुम्हें लगता है वो पंछी मर सकता है? यहाँ कोई नहीं मरने वाला, वो उससे बढ़कर थी, क्योंकि उसके पास क्या था? पातिव्रत्य सतीत्व का जो सामर्थ्य था। इसलिए प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं, स्त्री के पास दो ही गुण होने चाहिए, कोई और कुछ आए ना आए उसको, उसको अपने पति की सेवा के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। मीन्स उसके अंदर पतिव्रता का जो भाव है वो होना चाहिए और धर्मनिष्ठ होनी चाहिए। और दूसरा गुण प्रभुपाद कहते हैं, उसको अच्छा भोजन बनाना आना चाहिए। उसको भोजन भी नहीं बनाया आ रहा है, क्या पत्नी ना, तो कितना मुश्किल है उस पति के लिए, तो कष्टमय जीवन है। प्रभुपाद कहते हैं ये दो गुण होने चाहिए। और यदि किसी स्त्री में या किसी पत्नी में ये गुण नहीं है पतिव्रता का, तो वो वास्तव में वो पत्नी नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, हम यदि हम धीरे धीरे जब ये गुण हम किसी स्त्री में नहीं होता, और फिर जो सबसे बड़ा गुण है, लेकिन फिर देखा जाए तो सबसे बड़ा दोष क्या है किसी पत्नी या स्त्री में, तो श्रील प्रभुपाद इन तात्पर्य में लिखते हैं व्याभिचार। हाँ, उसके सबसे बड़ा दुर्गुण कोई है तो व्याभिचार है। किसी पर पुरुष का स्मरण अपने मन, हृदय या शरीर पानी आदि से करना, ये उसके लिए वास्तव में व्याभिचार है। जितना अधिक उसके हृदय में शुद्धि होगी, तो उतनी ही वो सामर्थ्यवान और शक्ति संपन्न हो सकती है। शास्त्र कहते हैं कि व्याभिचारी स्त्री का मुख देखने मात्र से व्यक्ति के हृदय में पाप संचालित हो जाते हैं, बढ़ते हैं। उसके हृदय में भौतिक जगत को भोगने की जो भावना है वो बढ़ती है, उसके हृदय में जो बंधन है भौतिक उसके बढ़ने लगते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री को अपने पति के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए और किसी भी प्रकार से पति की सेवा करनी चाहिए, हाँ, पति की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद दो शब्द में बोलते हैं कि स्त्री को पति की सेवा कैसी करनी चाहिए। प्रभुपाद देवोति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि माता देवोति ने जो राजकुमारी होते हुए भी अपने पति कर्दमुनि की सेवा की, विश्रमेणा गौरवेणा, ये दो शब्द कहते हैं। विश्रमेणा मीन्स प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मीय मित्र के भांति उसकी सेवा करनी चाहिए, और गौरवेणा का मतलब है उसको ऊंचा स्थान देकर आदर सम्मान के साथ उसकी सेवा में लगना चाहिए। जिस समय किसी स्त्री के हृदय में
थोड़ी भी आपने पति के प्रति तुच्छ भावना आती है, उसी समय उसका पतन क्या हो गया है, शुरू हो गया है। हाँ, थोड़ा भी भावना वृद्धिगत होता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं कभी भी अपने पति को तुच्छ नहीं देखना चाहिए या दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। शास्त्र कहते तीन दोष है, एक तो स्त्री ने कभी दुर्वचन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और क्रोध पूर्वक दृष्टि नहीं डालनी चाहिए या वो मोह तीसरी ओर करके उससे बातें नहीं करनी चाहिए। कहते ये बहुत बड़े दोष है। हाँ, और कभी भी अपना जो पति है उसको निम्न नहीं देखना चाहिए। जैसे कई बार जो स्त्रियां है वो अपना बैंड बजाती है, मतलब अपना वर्चस्व प्रस्तुत करती है। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली उसका हित किसमें है, पति के सबॉर्डिनेट होगी तभी वो आध्यात्मिक कार्यों में भी उन्नति कर सकती है, क्योंकि पति आधे पाप उसका स्वीकार करता है। पति बनना मीन्स क्या करना, पत्नी के आधे पाप स्वीकार करना और अपना आध्यात्मिक जो गेन है आधा, इसलिए तो अर्धांगिनी है शास्त्र कहते हैं, वो उसको देना होता है। तो किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ, देखो कुंती है, माद्री है, द्रौपदी है, सीता देवी, सीता ने यह नहीं कहा अरे तुम्हें बोला घर में तुम जा मैं इसी में रहूंगी, हाँ ऐसे कहा सीता ने नहीं, जहां भगवान राम है उसके पति वही उसका जीवन है। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं पति रेव ही नारीना दैवतम परम स्मृतम। छठे स्तर में भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक स्त्री के लिए है पति उसका क्या है, दैवत है और उसके अधीन होकर भगवत भक्ति में उसे क्या करना चाहिए, लगना चाहिए। तो जब नारद जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि तीन प्रकार की स्त्रियां हैं और फिर उनका पतन कैसे होता है, वो पतग्रस्त कैसे होती हैं, उसका वर्णन नारद करते हैं। जिस प्रकार से दीदी यहाँ क्या हो रही थी, धीरे धीरे पतग्रस्त हो रही थी, तो नारद जी कहते हैं कि वास्तव में सर्वोच्च श्रेष्ठ स्त्री कोई है, वो प्रथम प्रकार है जिसको कहते हैं साध्वी। साध्वी मीन्स स्नेहवश निरंतर पति की सेवा में लगती है और धार्मिक कार्य में मग्न रहती है और अपने सुख के लिए कोई कामना नहीं रखती है, अपनी प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचती है। जो उसके पति के उद्देश्य है, जो पति की सेवाएं हैं, उसमें वो कंधे में कंधे लगाकर वो करती है। और दूसरी प्रकार की स्त्रियां कौन सी है, भोग्या। भोग्या मीन्स वो सेवा तो करेगी लेकिन मन में इतनी इच्छा है इसलिए सेवा करनी है, कपड़े मिलने चाहिए, अच्छी खासी साड़ियां, गहने मिलने चाहिए और कुछ उसकी कामनाएं बहुत होती है, इसलिए काम चलाओ पति के आगे पीछे उसकी सेवा आदि करती रहती है। लेकिन तीसरे प्रकार की जो स्त्री है, नारद जी कहते हैं कि वास्तव में उससे पतन शुरू हो गया है। अब वो कौन सी है, जिसको कुलटा कहा गया है शास्त्रीय भाषा में। कुलटा मतलब वो पति के साथ रहती है लेकिन सेवा का दिखावा करेगी या फिर कपट से सेवा करती है और उसके अंदर कोई पति भक्ति आदि कुछ नहीं है। इस प्रकार से नारद कहते हैं कि वो तो उसके हृदय तो छुरे के समान तेज है लेकिन पति के सामने केवल मीठी मीठी बातें करेगी और अपने मन में क्या करेगी, पर पुरुष का ध्यान, पर पुरुष का चिंतन और पर पुरुष से बातें करने में आनंद अनुभूति करेगी। तो इस प्रकार से ये क्यों नारद कहते हैं, जब स्त्री अपना जो एक आभूषण है लज्जा वो जब भूलती है तो वो क्या करती है, साध्वी से नीचे निकल जाती है। तो ये जो लज्जा आभूषण है, हाँ स्त्री के लिए सर्वोत्तम है। प्रभुपाद को पूछा कि क्यों महत्वपूर्ण है स्त्री को लज्जा, प्रभुपाद कहते हैं ये लज्जा आभूषण यदि स्त्री के पास हो सदैव तो उसके उसके प्रति उसकी दो चीजें बढ़ती हैं। प्रभुपाद कहते हैं लज्जा से एक स्त्री की सुंदरता बढ़ती है और लज्जा से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग उसे क्या करते हैं, आदर के रूप में देखते हैं,
आदर आदि प्रणाम करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं सलज्जा कनिका नष्टा लज्जा ही कुलस्त्रिया, कहते असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो ब्राह्मण नष्ट कैसे होता है, जो ब्राह्मण होकर कभी संतुष्ट नहीं है, भक्त होकर कभी संतुष्ट नहीं रहा, तो वो नष्ट हो जाएगा उसका भक्ति या ब्राह्मण अथवा, या फिर राजा होकर हाँ वो भी नष्ट हो सकता है यदि संतुष्ट नहीं है। फिर वो कहते गणिका वेश्या नष्ट हो सकती है यदि वो लज्जा रखेगी, लेकिन कुलस्त्री के लिए बोलते हैं कि यदि वो लज्जा ही हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं लज्जा से सुंदरता, उसकी प्रतिष्ठा और उसके प्रति आदर की भावना समाज में बढ़ती है। उसी को चाणक्य पंडित ने कहा। चाणक्य कहते हैं कि जो कोयल है दिखने में काली होती है, लेकिन उसकी आवाज कैसी होती है, मीठी, जिसके कारण काली कोयल भी कैसी लगती है, सुंदर लगती है। उसी प्रकार से चाणक्य कहते हैं एक स्त्री सुंदर तभी हो सकती है जब उसके अंदर सत्व का गुण हो और उसके अंदर आज्ञाकारिता की भावना हो। जब वो आज्ञाकारिता की भावना खत्म हो जाती है तो उसका जीवन और वो दूसरों का जीवन भी क्या कर देती है, हम पतप्रस्त कर देती है। तो ऐसी स्त्री के लिए शास्त्रों में मृत्यु शब्द का इस्तेमाल किया है कि वास्तव में ये मृत्यु है सबके लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सदैव एक स्त्री की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। पिता जब छोटी होती है तो पिता के द्वारा उसकी रक्षा होती है, और जब यौ युवा अवस्था होती है तो पति के द्वारा रक्षा होती है। रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, वृद्धा अवस्था आती है तो पुत्रों के द्वारा रक्षित होती है। न स्त्री स्वतंत्रति, रक्षक क्यों है, क्यों, क्योंकि जो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसी के साथ तो सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। इस दृष्टि से शास्त्र कहते हैं स्त्रियों को सोचना नहीं चाहिए कि अरे हमारी रक्षा में हम निम्न है। शास्त्र में एक और उदाहरण दिया है कि वास्तव में किसी के राजा के साथ सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ चलते हैं, रक्षा करते हैं, इट मीन्स वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन ने भी स्त्रियों के बारे में शुरुआत में ही प्रथम अध्याय में वर्णन किया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं यह युवा दीदी के आज के वचन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि वास्तव में पति के द्वारा ही जो स्त्री है उसका यश बढ़ता है। हाँ, कैसे बढ़ेगा यश, जब पति के प्रति आज्ञाकारिणी हो, पतिव्रता भावना उसके अंदर हो। नहीं तो क्या है, वो पति को क्या समझती है, कठपुतली, या जैसे मदारी अपने बंदर को नचाता है वैसे वो सोचती है मेरे लिए पति क्या है, एक बंदर की भांति है, मैं उसको जैसे चाहे नचा सकती हूँ। लेकिन वास्तव में जब ऐसी सात्विक स्वरूप की स्त्री भगवत भक्ति के कार्य में अपने पति के साथ निमग्न होती है तो वो भगवत प्राप्ति करने में सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य प्राप्त करती है। एक महान भक्तों का वर्णन आता है, एक जो स्त्री है वो कितनी उन्नत है एक पुरुष से भी। महाराष्ट्र में एक महान डिवोटी हुए हैं भगवान विट्ठल के, उनका नाम था राका और उनकी पत्नी का नाम था बाका। अमेजिंग जोड़ी था राका बाका। हाँ, तो महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण द्वापर युग के एंड में जब गए, उनकी पत्नी कृष्ण की भी पत्नी रुक्मिणी गुस्सा आकर चली गई मायके। उसका मायका क्या था, महाराष्ट्र था, विदर्भराज भीष्म की पुत्री थी। ये द्वारका में उसने देखा ये कृष्ण वृंदावन राधा राधा ये सब चिल्लाते रहते, उसने एक दिन लड़ाई कर दी रुक्मिणी, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। वो भागेगी, कहां तक भागेगी, श्री अपने पिता के घर भागेगी। तो ये गई, अभी थोड़ा समय हो गया, कृष्ण भी सोचे मैं भागता उसके पीछे, मनाकर उसको लेके आता। कृष्ण दौड़ के उसके पीछे गए रथ लेकर, रुक्मिणी का रथ आगे, कृष्ण का रथ पीछे। महाराष्ट्र में वो एक जंगल है दंडकारण्य,
जहां भगवान अभी निवास करते हैं वो दंडकारण्य में घुसी और वहां भगवान ने उसको पकड़ लिया। भगवान ने कहा हे रुक्मिणी अभी छोड़ो ना सारा बात विवाद, चलो वापस चलो वापस चलो द्वारका। उसने कहा नहीं श्रीहर बालहर, उसमें श्रीहर उसने कहा नहीं आया मुझे द्वारका। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ते रहिए बहुत कुछ किया। भगवान ने कहा चलो अभी नहीं आना है मत आओ। भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं अपने भक्त के घर। तो उधर एक छोटा सा गांव था, गांव वहां के डिवोटी रहते थे, उनका नाम था कुंडलिक। कुंडलिक नाम के डिवोटी थे युवा भक्त और वो बहुत अच्छे भक्त थे। पहले वो पत्नी के भक्त थे, बाद में किसके भक्त बने कृष्ण। उनका चरित्र आप देखोगे हम छोटे थे तो स्कूलों में भी उनके बारे में बोला जाता था, स्टोरी सुनाएंगे आपको, कहते विठल का और कुंडलिक का। ये जो इतना पत्नी प्रेमी था, पत्नी का भक्त था कि एक बार उनके माता पिता कृष्ण के महान भक्त थे तो वो काशी जाने के लिए निकले माता पिता। तो इसने कहा अच्छा माता पिता काशी के लिए निकले, मेरा विवाह हो गया मैं भी पत्नी के साथ जाऊंगा। तो माता पिता के गले में रस्सी बांध दिया और पत्नी को कंधे में बिठाया और रस्सी किसके हाथ में पकड़ाई माता पिता के हाथ में, जैसे आप लेके जाते हैं ना गोवर्धन परिक्रमा, या फिर आप देखो भीड़ भाड़ में बूढ़े लोगों को लेके जाते तो कोई डंडा हाथ में पकड़ाते कपड़ा हाथ में पकड़ाते। कि ऐसा पत्नी प्रेमी था कि माता पिता के गले में रस्सी, पत्नी को कंधे में और निकले काशी यात्रा। तो ऐसे जो जा रहा था फिर आगे घटना होती जिससे वो भक्त बनता है और भक्त बनने के बाद वो देखता है कि मेरे माता